Abdullah 2, cassette number 20. न जाने उनके हाथों में कैसा जादू था कि मैं पल भर ही में मदहोश सा हो गया। मुझ पर गुनूदगी का शदीद हमला हुआ और पलकें बोझल होकर खुद ब खुद गिरती चली गईं। तभी मुझे यूं लगा जैसे कोई हौले हौले मेरा शाना हिला रहा हो। फिर मुझे दूर कहीं से पापा की आवाज सुनाई दी, आंखें खोलो बेटा, देखो शाम ढल रही है। मैंने नकाहत के बोझ तले दबे पपोटों को धीरे धीरे खोला। मेरा जिस्म पसीने से तर था, मतलब बुखार उतर चुका था, लेकिन वो जो कुछ मैं अभी चंद लम्हों पहले महसूस कर रहा था वो सब क्या सिर्फ एक ख्वाब था? मैंने जल्दी से इधर उधर कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वहां ना तो मौलवी खिजर मौजूद थे और ना ही हाकिम बाबा। बाकी सब लोग भी न जाने कहां चले गए। मैंने पास बैठी मम्मा से पूछा कि क्या अभी कुछ देर पहले यहां साहिली दरगाह से कुछ मुलाकाती आए थे। मम्मा ने नफी में सर हिला दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसा ख्वाब था। इतने में नर्स ने आकर बताया कि सुल्तान बाबा की बेहोशी का वक्फा कुछ देर के लिए फिर टूट गया है। मैं लपक कर उनके बिस्तर के करीब पहुंचा। मुझे देखकर वो धीमे से मुस्कुराए। मैंने उनके इशारे पर अपना कान उनके होंठों के करीब कर दिया। उनकी आवाज बमुश्किल मुझ तक पहुंच रही थी। साहिर मियां, अब आरजी जुदाई का वक्त हो चला है। मैं अपने हवास की आखिरी हद से पहले हिजाज के सफर पर जाना चाहता हूं। मैंने हाकिम और खिजर को पैगाम भेज दिया है। बस तुम भी मुझे रुखसत कर दो। मेरी बदहवासी फुजूं तर हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस हालत में कैसे जा सकते हैं? और फिर जाना तय ही है तो मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। जहां सुल्तान बाबा वहीं अब्दुल्ला। आपने अकेले सफर करने का तसव्वुर भी कैसे कर लिया? उनकी मुस्कुराहट गहरी लेकिन आवाज दूर होती चली गई। अब्दुल्ला भला सुल्तान से कब जुदा हुआ है? लेकिन तुम्हें यहां अभी मेरे बहुत से अधूरे काम सरंजाम देना है, लिहाजा तुम्हारा यहीं रुकना जरूरी है। और याद रहे, साबित कदम रहना। वक्त की आंधी अपना आखिरी जोर जरूर लगाएगी, तुम्हारे कदम उखाड़ने की कोशिश भरपूर करेगी, मगर तुम्हें जमे रहना होगा। यही मेरा आखिरी हुक्म है। मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी हथेलियों की पुष्ट भीगती चली गई। लेकिन मैं यहां अकेला कैसे रह पाऊंगा? मुझे तो अभी ठीक से चलना भी नहीं आता और आप मुझे बराह रास्त दौड़ के मैदान में धकेले जा रहे हैं। मैं टूट जाऊंगा आपके बिना। उनकी आवाज टूट कर उभर रही थी। कभी भी कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता साहिर मियां। हम सबको एक न एक दिन जुदा हो जाना है, लेकिन इत्मीनान रखो, ये जुदाई सिर्फ اس خاکی جسم کی جدائی ہوگی۔ سلطان بابا ہمیشہ تمہارے آس پاس موجود رہے گا۔ اب مسکرا کر میری طرف دیکھو ایک بار، تم نے تو سلطان کو بھی اپنے سحر کے حصار میں لے ہی لیا میاں۔ واقعی پکے ساحر ہو۔ میں ان کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر خود بھی ان کی دلجوئی کے لیے مسکرا دیا۔ انہوں نے اپنا لرزتا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور پھر غنودگی میں ڈوبتے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سلطان بابا نے حجاز جانے کی جس خواہش کا اظہار کیا تھا، ان کی وہ تمنا کیسے پوری ہوگی؟ اور سلطان بابا یہ جدائی کی بات بار بار کیوں کر رہے تھے؟ انہی الجھنوں میں گھرے جانے کب صبح کا سورج بھی نمودار ہو گیا۔ صبح ان کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم کے چہرے پر مایوسی کے اثرات میں صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے اسی ہجوم میں کسی ڈاکٹر کی سرگوشی سنائی دی، صرف دماغ ہی کام کر رہا ہے، باقی تمام اعضاء تقریباً کام چھوڑ چکے ہیں۔ میرا جی چاہا کہ میں اس شخص کا گریبان پکڑ لوں اور چیخ چیخ کر پورے اسپتال سے کہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، میں نے خود اپنے ہاتھوں ان کے منہ میں پانی ٹپکایا تھا، پھر یہ ڈاکٹر کیا ناپ شناپ بولے جا رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ڈاکٹر ہاتھ میں ایک کاغذ لیے کمرے میں نمودار ہوا۔ سعودیہ اسپتال کا فیکس آ گیا ہے، ڈاکٹر حیات بن حبیب نے مریض کو حجاز منتقل کرنے کی اجازت دے دی ہے، اب ان کے علاج کی آخری امید بس ڈاکٹر حیات ہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اجازت نامے پر دستخط کون کرے گا؟ ان کا کوئی قریبی عزیز بھی تو نہیں ہے آس پاس؟ سب کی نظر میری جانب اٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ سلطان بابا کی تمنا پوری ہونے پر ہنسوں یا ان کے جدا ہونے پر زور زور سے روؤں۔ جانے ڈاکٹر حیات بن حبیب کون تھے اور ان کا سلطان بابا کی بیماری سے کیا تعلق تھا، لیکن اتنا تو صاف ظاہر تھا کہ سلطان بابا نے اپنے حجاز کے سفر کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں نے اجازت نامے پر ان کے شاگرد کے طور پر دستخط کر دیے اور ضمانت نامہ بھی بھر دیا کہ کسی بھی انہونی کی ذمہ داری میری ہوگی۔ یہ نادان طبیب کیا جانے کہ جو انہونی ہونی تھی وہ تو ہونے جا رہی تھی، میرے جسم سے جیسے میری روح جدا ہو رہی تھی۔ سلطان بابا کے چہرے پر قومے کی حالت میں بھی ایسا سکون آمیز تاثر تھا جیسے گہری نیند سو رہے ہوں۔ ایک بار میرے جی میں آیا کہ ان سے کیا وعدہ توڑ دوں اور ان کی حکم عدولی کرتے ہوئے میں بھی اسی جہاز پر سوار ہو جاؤں جو ابھی کچھ دیر بعد انہیں لے کر حجاز کی مقدس سرزمین کے لیے روانہ ہونے والا تھا، لیکن ایمبولنس سے اترتے ہی میرے دل کا یہ چور بھی پکڑا گیا۔ مریضوں کے لیے بنائی خصوصی راہداری جو اسٹریچر سمیت مریض کو سیدھا رن وے تک لے کر جاتی تھی، اس کے سرے پر مجھے حاکم بابا اور مولوی خضر سمیت اپنے پرانے سبھی ساتھی انتظار کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب مجھے ان باتوں پر حیرت نہیں ہوتی تھی، شاید رفتہ رفتہ میں خود بھی اسی غیر مرئی نظام کا حصہ بنتا جا رہا تھا جو سلطان بابا کے ارد گرد اور ان کے معتقدین کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا۔ تبھی مجھے پتا چلا کہ حاکم بابا اس سفر میں سلطان بابا کے ہم سفر ہوں گے۔ کتنا بے بس تھا میں اس لمحے، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بیماری تو صرف ایک بہانہ ہے، سلطان بابا نے خدا کے گھر کی زیارت کرنی تھی اور بس، اور وہ جانتے تھے کہ میں انہیں اکیلے کہیں نہیں جانے دوں گا، لہذا انہوں نے چپ ساتھ کر میری ضد کا راستہ ہی بند کر ڈالا تھا۔ حاکم بابا بہت دیر تک مجھے سینے سے لگا کر تھپکتے رہے، کچھ سفر آغاز ہی سے اپنا انجام بیان کر دیتے ہیں۔ मुझे भी यूं महसूस हो रहा था कि मेरे अलावा वहां सब मौजूद लोग इस अंजाम से वाकिफ हैं। सिर्फ एक मैं ही हूं इन सब में ऐसा कमजोर जिसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद फजा में हवाई जहाज को बुलंद होते हुए देख रहा था। जाने क्यों मेरे दिल से एक खामोश सदा निकली, अलविदा। कभी कभी हमारी जिंदगी में अचानक ही कुछ ऐसे खला पैदा हो जाते हैं कि हमें खुद अपना आप हवा में मुअल्लक नजर आता है। कुछ ऐसी ही मेरी भी सूरत हाल थी। मौलवी खजर ने मुझे मशवरा दिया कि मैं रात गुजारने के लिए घर चला जाऊं और जी चाहे तो सुबह साहिल वाली पुरानी दरगाह पर आ जाऊं। घर के गेट से अंदर दाखिल होते ही न जाने क्यों उस पुराने साहिर की याद ने शिद्दत से आ घेरा। शायद इस याद के पीछे भी जहरा की सुलगती यादों के अंगारों की आंच और हिद्दत मौजूद थी। मुझे साहिर इसलिए भी याद आया कि वो झपट कर छीन लेने का आदी था, जबकि उसके बरक्स अब्दुल्ला खुद अपनी दुनिया लुटते देखकर भी होंठ सिए हुए बैठा था। आज अगर वो पुराना साहिर होता तो किसी की क्या मजाल थी कि वो इत्मीनान से उसकी मोहब्बत को छीन कर ले जाता। वो जहरा के महल की चौकट पे जा बैठता और अपनी कजा या फिर जहरा का हाथ कोई एक सौगात लेकर ही वापस लौटता। लेकिन ये कैसा अलमिया था कि सुल्तान बाबा ने मेरे अंदर के साहिर की तमाम गिरहें अब्दुल्ला नाम की आजी से बांध रखी थी। जब हम मजबूर और लाचार इंसान बहुत ज्यादा बेबस हो जाते हैं तो हमारा झगड़ा हमारे खुदा से शुरू हो जाता है। हमें अपने गुज़श्ता तमाम गुनाह जायज लगने लगते हैं और हमारे दिल में दूर कहीं ये ख्वाहिश अंगड़ाइयां लेने लगती है कि हमारा खुदा भी हमें उसी तरह मना ले जिस तरह किसी बेजाजत पर रात को खाना खाए बगैर सो जाने पर हमारी मां मनाती है। बालों में उंगलियां फेर कर, कभी गुदगुदा कर और कभी रोकर। मैं भी अपने खुदा से नाराज सा बिना खाना खाए बिस्तर पर जाकर लेट गया। जब इंतकाम लेने के लिए कोई हस्ती मयसर ना हो तो फिर इंसान खुद अपने आप से ही इंतकाम लेने पर मजबूर हो जाता है। और मैं तो खुद ही अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन था। मुझे भला किसी और दुश्मन की जरूरत ही कब थी। लिहाजा मैं खुद ही अपनी रूह को गम दुख और जलन की बिरछियां घोंपता न जाने कब नींद की वादी में पहुंच गया। तभी मुझे यूं लगा जैसे सुल्तान बाबा मेरे पलके मुड़ने के इंतजार ही में मेरी पुतलियों के पीछे कहीं छुपे बैठे थे। उनका लिबास सफेद और तस्बीह का रंग दूधिया था। दूर पस मंजर में सब्ज गुंबद की हल्की सी परछाई दिखाई दे रही थी। सुल्तान बाबा के चेहरे पर खिलाफ मामूल बेहद ताजगी और बशाशत के आसार नुमाया थे। उन्होंने तरोताजा लहजे में मुझे उसी तरह छेड़कर मुखातिब किया जो इस दुनिया में बस उन्हीं का खासा था। क्यों मियां, तुम्हारी खुदा से जिद की आदत न गई? कभी दो घड़ी के लिए अपने अंदर की इस लड़ाई को रोक भी लिया करो। क्यों खुद को हर पल लहूलुहान किए रखते हो? मेरे लहजे में शिकवा था। आपको इससे क्या, आप तो मुझे तनहा छोड़ गए ना, ये जानते हुए भी कि मैं इस राह पर आपका हाथ पकड़े बिना एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। फिर भी आप मुझे यूं ही दरमियान में भटकता छोड़कर चल दिए। सुल्तान बाबा धीरे से मुस्कुराए। परिंदे को परवाज सिखाने के लिए उसके अपने शाहपर को भी एक मर्तबा उसे चोटी से नीचे फेंकना ही पड़ता है। ये उस नौजायदा के पर खोलने के लिए जरूरी होता है। मुखालिफ हवा का दबाव, तेजी से करीब आती चटाने, जमीन की कशिश और आंधी जैसी चिंगाड़ती आवाजें उस शाहीन बच्चे को अपने पंख फड़फड़ाने पर मजबूर कर ही देती हैं। मैं गिड़गिड़ाया, लेकिन मेरे पर तो पहले ही किसी के नाकाम इश्क ने काट दिए हैं, मुझे परवाज का सबक क्या देंगे आप? मेरी उड़ान तो भरने से पहले ही किसी की जहरीली मोहब्बत ने घोंट दी है। अब मेरा मुकद्दर सिर्फ चोटी से नीचे की जानिब झांकती कातिल चट्टानों से टकराकर पाश पाश होना है। फना ही मेरा मुकद्दर है, लेकिन अफसोस कि मेरी तबाही का यह मंजर देखने के लिए आप यहां नहीं हैं। कम अज कम मुझे आखिरी कंधा तो दे जाते। मेरी आवाज खला में भटक कर वापस आ गई और अगले ही लम्हे मेरी आंख खुल गई। फिर पूरी रात मैं करवटें ही बदलता रहा। शायद वो फजर से जरा पहले की कोई साथ थी जब किसी ने घबराए हुए लहजे में मेरे कमरे का दरवाजा धड़धड़ाया। मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से दरवाजा खोला तो मम्मा और पापा दोनों ही तारीख चेहरे लिए बाहर मौजूद थे। मेरी सांसें अटकने लगी। क्या हुआ? मम्मा ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन उनकी आवाज अंदर ही घुट गई और वो रोने लगी। मैंने पापा को पकड़कर झंझोड़ा, खुदा के लिए कुछ तो बोले। पापा ने मेरे कांधे जोर से थाम लिए। अभी अभी दरगाह से मौलवी खिजर का पैगाम आया है, सुल्तान बाबा अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मेरी समातें शल हो गईं। उसके बाद पापा ना जाने क्या बोलते रहे, मुझे सिर्फ उनके लब हिलते हुए महसूस हुए। शायद मैं वहीं घुटनों के बल जमीन पर गिर भी गया था और शायद नीचे गिरते वक्त दरवाजे की चौखट से मेरा सर टकराया भी था, क्योंकि मैंने मम्मा को जल्दी से अपना दुपट्टा फाड़कर सर पर पट्टी बांधते महसूस किया। लेकिन क्या मेरी नसों में अभी खून की रवानी बाकी थी और क्या मेरी सांस अभी चल रही थी? क्या मेरी बसारत का हर रंग अभी कायम था? अगर ऐसा था तो फिर मैं वाकई बड़ा कमजर्फ था। अकीदत और मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि मेरे हवास भी ठीक उसी लम्हे हमेशा के लिए मुअत्तल हो जाते जिस लम्हे मैंने पापा से वो लफ्ज सुने थे। लेकिन हैफ मुझ पर कि मैं अब भी पापा को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुन रहा था, साहिर होश में आओ। मौलवी खिजर ने जोहर के बाद दरगाह पर सुल्तान बाबा की गायबाना नमाज जनाजा का पैगाम भेजा है और तुम्हारे लिए खास हुक्म है वहां पहुंचने का। शायद ये भी सुल्तान बाबा की आखिरी ख्वाहिश ही हो। लेकिन मैं इस वक्त किसी हुक्म की तामील के काबिल ही कहां था। पता नहीं कब सूरज चढ़ा और कब पापा मुझे दो नौकरों की मदद से संभाले अपनी गाड़ी में दरगाह की जानिब रवाना हुए। कुछ अनहोनियां ऐसी होती हैं जो हमें साफ नजर आते हुए भी दरपेश आने के बाद उतना ही बड़ा असाबी झटका दे जाती हैं जैसे कि हम उनकी हकीकत से बिल्कुल ही बेखबर हों। मैं कहीं ना कहीं ये बात सुल्तान बाबा के हिजाज के सफर पर रवाना होने से पहले ही जानता था कि शायद ये उनका आखिरी सफर है, लेकिन उनकी कजा की खबर ने मेरे अंदर सभी कुछ खत्म करके रख दिया था। हैरत की बात ये थी कि उनकी रुखसती का ठीक वही वक्त था जिस वक्त वो मेरे ख्वाब में मुझसे हम कलाम थे। मेरे जहन में उनकी बात गूंजी, याद रहे ये जुदाई सिर्फ इस खाकी जिस्म की दूरी होगी, लेकिन मेरे लिए तो अब भी ये जिस्म ही सब कुछ था। मैं अभी रूह की हदों तक पहुंचा ही कब था। हम दरगाह पहुंचे तो हाकिम बाबा के अलावा बाकी सब लोग मौजूद थे। जाने मुझे किसने सहन में वहीं बिठा दिया जहां मैं कभी सुल्तान बाबा के सामने दो जानू होकर बैठा करता था। मुझे तो अब हर जानिब वही नजर आ रहे थे। फिर ये लोग उनकी जुदाई पर इस कदर अफसुरदा क्यों बैठे थे? मुझे मौलवी खिजर की आवाज कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। सोग सिर्फ 3 दिन का होता है। सोग? मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा। कैसा सोग? आज ये सब कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। जोहर की नमाज शुरू हुई तो किसी ने मुझे भी सफ में ला खड़ा किया और फिर फर्ज नमाज के बाद गायबाना नमाज जनाजा की नियत भी बांध ली गई। कभी किसी ने जिंदों की नमाज जनाजा भी पढ़ी है? नमाज के बाद दरगाह के लोगों के अलावा बाकी सब लोग तितर बितर हो गए। मुझसे पहले और बाद वाले अब्दुल्ला, मौलवी खिजर और कुछ अनजान लोग सर जोड़े पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। पापा मेरे करीब ही खामोश से बैठे थे। आज पहली मर्तबा मुझे इस दरगाह से वहशत हो रही थी। जाने कौन बता रहा था कि सुल्तान बाबा की वसीयत के मुताबिक उन्हें मक्का की सरजमीन के हवाले कर दिया गया है। मेरा जी चाह रहा था कि पापा से कहूं कि आज रात ही टिकट करवा लें, मैं बाबा के पास सऊदीया जाना चाहता हूं। असर के बाद मौलवी खजर ने हुजरे से एक कागज मंगवाया और धीरे से बोले, सुल्तान बाबा की वसीयत पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। फिर मौलवी खजर धीरे धीरे सुल्तान बाबा की इस्तेमाल की चीजों को उनकी वसीयत के मुताबिक बांटते गए। किसी के हिस्से में तस्बीह आई तो किसी को उनका जाय नमाज मिला, कोई लिबास और लाठी का हकदार ठहरा, मेरे लिए कुछ ना बचा। मौलवी खिजर ने वसीयत खत्म की और अब मैं आखिर में सुल्तान बाबा की वसीयत के मुताबिक उनके जानशीन का ऐलान करना चाहूंगा। सुल्तान बाबा ने अपना जानशीन उसे मुकर्रर किया है जो उनके मुताबिक सबसे ज्यादा इस एजाज का हकदार है, और वो हैं साहिर मियां। सुल्तान बाबा के अब्दुल्ला, मेरे हाथ से तस्बीह गिर गई। फरेफ्ता, कुछ लम्हों के लिए मुझे लगा जैसे इस साहली दरगाह के आसपास का तमाम शोर बिल्कुल साकित हो गया हो। लहरें अपनी जगह थम कर रुक गईं और फजा में तैरते परिंदे भी जामिद और मौलक हो गए। मैं तो खुद अपनी जात का जानशीन बनने के काबिल नहीं था। फिर ये मौलवी खजर क्या कह गए थे? जरूर उन्हें वसीयतनामा पढ़ते नजर का कोई धोखा हुआ होगा। वो भी तो शदीद गम के आलम में थे और गम में इंसान के सामने लिखी तहरीर के लफ्ज अक्सर आपस में गड़मड़ हो जाते हैं। लेकिन वो सब खामोश बैठे मेरी जानिब यूं देख रहे थे जैसे उनका फरीजा तमाम हुआ और अब जो भी कहना है मुझे कहना है। पर मेरे पास लफ्ज ही कहां बचे थे? मेरी तमाम लुगत तो सुल्तान बाबा अपने साथ ही ले गए थे और अब भला मुझे अल्फाज और कुव्वते गोयाई की जरूरत ही कब थी? जिनके लिए इजहार का ये जरिया, ये फन्ने गुफ्तगू मेरे अंदर पनप रहा था, वो दोनों ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। कभी कभी जब जबान तालू से चिपकी रहना चाहिए और लोग आपको कुछ कहने पर मजबूर करें तो ये लफ्ज भी कितना बड़ा बोझ बन जाते हैं। मैंने भी ये बोझ ढोने की हर मुमकिन सही की, लेकिन होंठों से अल्फाज तो ना निकल पाए, अलबत्ता आंखों से दो मोटे आंसू निकलकर दरगाह के चिकने फर्श पर सजदारेज हो गए। मौलवी खजर जल्दी से मेरी जानिब लपके, अरे ये क्या अब्दुल्ला मियां, ये आंसू? बस फिर क्या था, सैलाब का रास्ता रोकने वाले सभी बंद खसो खाशाक की तरह बह गए। मैं यूं बिलक बिलक कर रो रहा था जैसे कोई मासूम बच्चा मेले में अपनों से बिछड़कर तब रोता है जब शाम ढलने लगती है। आसपास के तमाम झूले और ठेले सुनसान हो जाते हैं और धीरे धीरे छाता अंधेरा उसे डराने लगता है। दरगाह पर भी शाम ढल रही थी और मेरी आंखों में सावन टूट कर बरस रहा था। मुझे चुप कराते कराते सभी निढाल होने लगे और पप्पा तो बाकायदा खुद भी रो पड़े। शायद हम इंसानों के आंसुओं का कुछ बाहमी रिश्ता जरूर होता है, तभी हम अक्सर किसी दूसरे को रोता देखकर खुद भी रो पड़ते हैं और कभी कभी तो हमारा रोना उन दूसरे बावकार और संजीदा तबा लोगों के लिए भी एक नेमत साबित होता है जो दूसरों के सामने रोने में पहल से हिचकिचाते हैं। मेरी हालत के पेश नजर किसी ने मुझसे कोई दूसरा सवाल नहीं किया। मगरिब के बाद पापा ने मौलवी खिजर से मुझे घर ले जाने की इजाजत तलब की। मौलवी खिजर ने मेरी जानिब यूं देखा जैसे वो मुझसे मेरी राय जानना चाहते हों, लेकिन अब मुझे जमानो मकान से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं पत्थर हो चुका था और पत्थर को इस बात से क्या गरज कि वो किसी दरगाह की दीवार में जड़ा रहे या फिर किसी मकान की ताक में। البتہ پپا اس کلیے سے بہت اچھی طرح واقف تھے کہ غم سے عارضی فرار کا بہترین ذریعہ نیند ہے. سو انہوں نے گھر پہنچتے ہی نہ جانے کسی بہانے مجھے نیند کی کوئی دوا پلا دی. لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ اب نیند میرے لیے دوسری بیداری بن چکی تھی. ایک جہاں کی طرف آنکھیں بند ہونے لگتی تو دوسرا جہاں نظروں کے سامنے کھل جاتا تھا. لہذا آنکھیں بند کرتے ہی میری روح کے بند کباڑ کھلنے لگے. میں نے خود کو کسی میلاد کی محفل میں پایا. سب ہی چپ چاپ ورت میں مشغول تھے. میری آنکھیں سلطان بابا کو ڈھونڈتی رہی تھیں پر وہ مجھے وہاں کہیں نظر نہیں آئے. میں نے قریب بیٹھے ایک بزرگ سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھ پر ہلکی سی سرزنش بھری نظر بھی ڈالی. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سب لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن میں بھی انہی کے ساتھ فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گیا اور خود بھی باقی سب حاضرین کی تقلید میں آنکھیں بند کر لی. ٹھیک اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی. باہر دن چڑھ کر اترنے کے قریب تھا، شاید اثر سے کچھ پہلے کا وقت ہوگا. میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، گویا میں پوری رات اور سارا دن سوتا رہا. عام طور پر میں قضا نمازوں کو بھی بہت پابندی سے ادا کرتا تھا، لیکن اس روز نہ جانے کیوں اثر کی فرض نماز میں بھی میرا دھیان کسی اور جانب ہی بٹا رہا. مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ میں نے آج تک اپنی ایک بھی نماز مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی ہو. ہر بار کوئی سودا ذہن میں سمایا ہی رہا، کبھی نفس اور کبھی جنس. بس اتنا ہی محدود دائرہ تھا میرا. پھر مغرب ہوئی، پھر عشاء، لیکن میں اپنے کمرے ہی میں بند رہا. مما تین چار بار کمرے میں جھانک کر واپس چلی گئی، لیکن مجھے باہر نکلنے کا سوچ کر ہی وحشت ہونے لگتی تھی. شاید وہ تیسرا دن تھا جب میرے بعد والا عبداللہ نعمان مجھے لینے کے لیے آن پہنچا. مولوی خضر نے بلاوا بھیجا تھا. میں درگاہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن مولوی خضر کی بات ٹالی بھی نہیں جا سکتی تھی. میں چپ چاپ درگاہ چلا آیا. ذہن میں بہت سے لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا. سبھی میری آمد پر یوں چونکے اور مجھ سے کچھ ایسا خاص برتاؤ کیا گیا کہ مجھے الجھن سی ہونے لگی. خدا خدا کر کے عصر کے بعد دعا ہوئی تو کچھ تنہائی میسر آئی. میں ڈھلتی دھوپ کے ایک شریر لیکن نامکمل ٹکڑے میں دیوار کی منڈیر کے قریب آ کر بیٹھ گیا. شاید دھوپ بھی زندگی کی علامت ہوتی ہے، تبھی وہ ہم سے اس قدر جلد روٹ جاتی ہے. خاص طور پر عصر کے بعد کی دھوپ تو کچھ یوں لپکتی جھپکتی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے جیسے اس نے شام کے اندھیرے سے کچھ وعدے جوڑ رکھے ہوں، کچھ قسمیں باندھ رکھی ہوں. میں بھی اسی عصر کے بعد کی دھوپ کو گاؤں کی اس الڑ کی طرح تیزی سے پلٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا جسے کنویں کی منڈیر پر پانی بھرنے کے بہانے اپنے محبوب کے انتظار میں شام پڑ گئی ہو. اس کے محبوب کے گھوڑے کی ٹاپیں کنویں تک آتی پگڈنڈی پر نہ گونجی ہوں اور اب وہ بیچاری اس سوچ میں تیز قدموں سے گھر لوٹ رہی ہو کہ گھر کے آنگن میں ٹہلتے بابل کو یوں اندھیرے تک باہر رہنے کا کیا جواز بتائے گی. میں نے جانے کہاں کھویا ہوا تھا کہ قریب ہی کسی کے ہلکے سے کھانسنے کی آواز سنائی دی. مغل ہونے کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ گھر واپس پلٹنے سے پہلے آپ سے دعا لیتا جاؤں. میں نے چونک کر نظریں اٹھائیں. مناسب قیمتی لباس میں ایک ادھیڑ عمر شخص مؤدب سا سر جھکائے میرے قریب کھڑا تھا. اس کے چہرے پر چیچک کے ہلکے سے داغ تھے اور ماتھے سے بال کافی حد تک اڑے ہوئے تھے. گہرا ساملا رنگ اور چھوٹی چھوٹی تیز آنکھیں. میں نے اپنی بیزاری چھپانے کی کوشش کی اور مولوی خضر کی جانب اشارہ کیا جو صحن میں موجود زائرین میں نیاز بٹوانے میں مشغول تھے. آپ ان صاحب سے مل لیں، وہ میرے استاد بھی ہیں اور وہی اس درگاہ میں اس وقت سب سے معمر اور قابل احترام شخصیت ہیں. وہ آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے. میں کسی کو دعا دینے کے قابل نہیں، مجھے تو خود آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. وہ شخص اپنی جگہ جمع رہا. جی، میں پہلے انہی مولانا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. دیکھیے، آپ مجھے ٹالیے گا نہیں، میں بڑی دور سے یہاں تک آیا ہوں. میں نے حیرت سے پہلے اسے اور پھر مولوی خضر کی جانب دیکھا، بھلا انہوں نے یہ ذمہ داری مجھ پر کیوں ڈالی؟ بہرحال مجھے وہ شخص چلتا نظر نہیں آ رہا تھا، مجبوراً میں نے اس سے پوچھا، آپ ضد کرتے ہیں تو یوں ہی صحیح، لیکن آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ کوئی خاص حاجت؟ وہ شخص کچھ ہچکچایا، کچھ عجیب سی بات ہے لیکن اب بے چینی انتہا کو پہنچ چکی ہے، ہر جگہ کی دھول چاٹ چکا، اب آخر کار کسی نے اس درگاہ کا پتہ دیا ہے کہ یہاں میرا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ جس ہستی پر خدا کا یہ خاص کرم تھا وہ تو خود اس کی جانب پلٹ چکی، اب کون بھلا وہ دعائیں خاص کرے گا تمہارے لیے؟ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر اس نے اپنا گلا تر کیا اور بمشکل بولا، میرا مرض بڑا عجیب ہے جناب، میں فریفتہ ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جی؟ وہ گڑبڑا کر بولا، میرا مطلب ہے میں فریفتہ صفت ہوں۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ اس نے ایک گہری سی سانس لی، جی مجھے اندازہ ہے، دراصل یہ بات ہی اتنی الجھی ہوئی ہے کہ میں کبھی کسی کو ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں پایا۔ میرا نام بخت یار ہے لیکن میری بخت سے کبھی یاری نہیں رہی، ہوش سنبھالے تو متوسط طبقے کے ایک خاندان کا عام سا بچہ تھا، نین نقش بھی عام سے تھے، لیکن تب یہ چیچک کے داغ میرے چہرے کی زینت نہیں بنے تھے، یہ جوانی کا تحفہ ہے، البتہ رنگ تب بھی ساملا ہی تھا۔ میری طرح کے ہزاروں لاکھوں بچے اس ملک کے گھرانوں میں پل بھر میں بڑھ کر جوان ہو جاتے ہیں اور اپنی ڈگر پر چل پڑتے ہیں، بے حد اور شدید حساسیت بھی شاید ہی کبھی کسی کی راہ کی دیوار بنی ہو، یا شاید متوسط طبقے کے شب و روز ایسے بچوں سے خود بخود حساسیت چھین لیتے ہیں، لیکن قدرت نے میرے اندر کچھ اور ہی جذبے دھکا رکھے تھے۔ بے حد شرمیلا ہونے کے باوجود میں قدرت کی ہر خوبصورتی کو پوری طرح محسوس کر سکتا تھا، نویں دسویں جماعت میں ٹوٹے پوٹے شعر بھی کہنا شروع کر دیے، اور پھر انٹر کے بعد مجھے ایک عجیب سا ادراک ہوا کہ مجھے عورت کی خوبصورتی اپنی جانب عام انسانوں سے کئی درجے زیادہ کھینچتی اور متاثر کرتی ہے، میرا دل خوبصورت چہروں کے ارد گرد گھنٹوں منڈلانے کے لیے مچل مچل جاتا تھا، لیکن المیہ یہ تھا کہ میری حد درجہ عام بلکہ کسی حد تک بھدی شخصیت کے لیے میری ہم عمر لڑکیوں اور آس پاس کی دیگر خواتین کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ لڑکیاں پیٹ پیچھے مجھ پر ہنستی اور میری بردباری اور باوقار بنے رہنے کی کوششوں پر آوازیں کسے جاتے۔ کالج ختم ہوا اور پھر یونیورسٹی کا دور شروع ہوا تو میں بزم ادب کا منتظم منتخب ہو گیا۔ تب تک میری شخصیت کے برعکس میری شاعری کافی نکھر چکی تھی، اردو شعبے میں میری کافی دھاک بیٹھ گئی اور جونیئر لڑکیاں میرے لفظوں کی وجہ سے میرا احترام بھی کرنے لگی تھی، لیکن یہ ساری عزت میرے شعروں کی منہون منت تھی، خود میرا وجود ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے اندر چاہے جانے کی خواہش امر بیل کی طرح پھیلتی چلی گئی، لیکن پوری یونیورسٹی میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہ تھی جس نے کبھی نظر بھر کر بھی میری جانب دیکھا ہو۔ انہی میں میری کلاس کی گلے لالا بھی تھی، یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے اعلیٰ طبقے کے سبھی لڑکے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں صبح سویرے اس کی راہ میں پلکیں بچھائے اور ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ میرا دل بھی گلے لالا کے لیے اسی شدت سے دھڑکتا تھا، لیکن اسے متاثر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، نہ شکل و صورت، نہ روپیہ پیسہ، اور نہ ہی کوئی منفرد اور بھرپور صلاحیت۔ بدقسمتی سے اسے شعر و ادب کی محفلوں سے بھی کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، لہذا یونیورسٹی کے چار سالوں میں چار مرتبہ بھی میری اس سے بات نہیں ہو پائی، لیکن میرا وحشی دل مزید وحشی ہوتا گیا اور نتیجتاً مجھے جاگتے میں بھی خواب دیکھتے رہنے کی لت پڑ گئی۔ میرے خواب عموماً کچھ اس طرح کے ہوتے कि मेरे इर्द गिर्द खूबसूरत चेहरों का जमघटा है और मैं उन सब की नजरों में महबूब हूं। कभी मैं खुद को किसी इंतहाई शोला बयान मुकर्रर के रूप में देखता, जो यूनिवर्सिटी के स्टेज पर सारे हॉल को इनकलाबी तकरीरों से गर्मा रहा है, तो कभी पूरी महफिल लूट लेने वाला मौसीकार या गुलूकार बन जाता, और कभी फौजी या सिपाही जो सबका हीरो होता। लेकिन मेरी मुहिमजुई का इनाम सिर्फ मारुखों का कोई झुरमट होता। मेरे ख्वाबों में खूबसूरत ख्वातीन मुझसे सिर्फ चंद लफ्ज सुनने के लिए मरी जाती और मैं सब पर एक निगाह गलत अंदाज डालकर मुस्कुराता हुआ महफिल से गुजर जाता। दिलचस्प बात यह है कि मैं कभी किसी एक चेहरे या किसी एक गुलरुख के लिए हीरो न बनता, बल्कि वक्त वक्त कई नाजनीनाएं मेरी मदासराई में मशगूल रहती। लेकिन ख्वाब तो फिर ख्वाब होते हैं। मैं जब उन ख्वाबों के शहर से बाहर निकलता तो मेरी आम सी शख्सियत मेरा मुंह चिढ़ाती। अदीब और मुसन्निफ औरत की कमसूरती और उससे मुतालिक अलमियों का जिक्र तो अपने अफसानों में बारहा करते हैं, लेकिन किसी मर्द की कमतर शख्सियत और उससे जुड़े दुखों को आज तक किसी ने बयान करने की ज़हमत नहीं की। और मर्द भी कैसा, मुझ जैसा फरेफ्ता सिफ्त, जिसे हर लम्हा किसी परी रुख के आरस पर फैलते गुलाल के गुलाबीपन की जरूरत रहती थी। याद रहे कि मैं बदकिरदार हरगिज न था, मुझे तो बस खूबसूरती के एक एहसास की जरूरत थी जो हर लम्हा मेरे चार सू फैला रहे। शायद मेरे अंदर महबूब बनने की तमन्ना अपनी आखिरी हदों से भी कहीं आगे बढ़ चुकी थी, पर अफसोस मैं कभी किसी का महबूब न बन सका। मैं हमेशा उन तकारीब में सबसे पहले पहुंच जाता जहां किसी भी अच्छे चेहरे की एक झलक नजर आने की उम्मीद होती। बज़ाहिर मैं लापरवाह सा बना उस महफिल में टहलता रहता, पर मेरी नजरें अपना मखसूस तवाफ जारी रखती। मुझे हर दम यही खुशफहमी घेरे रहती कि महफिल का सबसे हसीन चेहरा मेरी किसी बात से मुतासिर जरूर होगा और कुदरत मेरे लिए ऐसा कोई मौका जरूर तराशेगी, जब खुद उस माजबीन के घर वाले मुझे अपने हां किसी तकरीब में मदऊ करेंगे। शायद कोई मुझे उर्दू शायरी में मदद के लिए शाम की चाय पर बुला ले। लेकिन अफसोस मेरा ख्वाब पूरा ना हो सका और आखिर घर वालों की पसंद से मेरी शादी हो गई। मैं किसी का महबूब बनने से पहले ही शौहर बन गया। मेरी बीवी एक सादा और नेक दिल औरत थी, पर वो कभी भी मुझे महबूब के दर्जे पर फायज ही ना कर सकी। शादी के बाद जब मैं पहली बार उनके साथ चंद दिन उसके गांव में रहने के लिए गया तो ये चेचक के दावों का तोहफा मेरा मुंतजर था। बीमारी के बाद मेरा दिल कुछ यूं उचाट हुआ कि मैंने रोजगार के लिए दुबई जाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। शायद इस कोशिश के पीछे भी कहीं मेरी फरेफ्तगी ही का दखल था। मुझे उम्मीद थी कि पैसा हाथ आने के बाद मैं जरूर चाहा जाऊंगा। मैंने सुन रखा था कि पैसा मर्द की तमाम बदसूरतियां छुपा लेता है। 10 साल मैंने दिन रात भुलाकर दुबई के रेगजारों में अपना पसीना बहाया और जब मैं वापस मुल्क लौटा तो एक रईस था। मैंने आते ही शहर की मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों में दिल खोलकर पैसा खर्च किया और फिर चंद हफ्तों ही में मैं कई अदबी और समाजी तंजीमों का एजाजी सदर बन चुका था। शहर की कोई तकरीब मेरी शिरकत के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती थी, लेकिन मेरा मसला अब भी अपनी जगह कायम था। मैं माशरे में जबरदस्ती की इज्जत तो किसी न किसी तौर पर कमा चुका था, लेकिन मोहब्बत की एक नजर अब भी मेरी वाहिद तलाश थी। मैं अपनी सारी दौलत देकर भी सिर्फ उस एक सताइश भरी नजर का तालिब था जो मुझे चंद लम्हों के लिए ही महबूबियत के मकाम तक पहुंचा देती। मैं हवाई जहाज का सफर इस उम्मीद पर करता कि शायद मेरी साथ वाली नशिस्त पर कोई हसीना बैठी मिल जाए, शायद कोई एयर होस्टेस ही मेरी तरफ नजर भर कर देख ले। अस्पताल में नजले जुकाम के लिए भी बेहतरीन कमरा महसूस करवा लेता कि शायद मेरी तबीब या नर्स ही वो चेहरा हो जिसके इल्तफात के इंतजार में मेरी सारी उम्र कट गई है। मैं जानबूझकर अपने इर्द गिर्द किसी न किसी बहाने हसीन चेहरों का जमघटा लगाए रखता, लेकिन कभी भी अपने दिल के अंदर کسی پائل کی نازک جھنکار سنائی نہ دی. کچھ میرے قریب بھی آئیں مگر وہ صرف روپے کی پجارنے نکلی. میرا پیسہ بھی میری ادھوری اور بدصورت شخصیت کو مکمل نہ کر سکا. میں صدا سامل ہی رہا، کبھی ساجن نہ بن سکا. اور آج زندگی کی 68 خزائیں جھیلنے کے بعد بھی میں یہاں اس دعا کی امید سے کھڑا ہوں جو میرے وحشی من کو سکون کا ایک لمحہ ہی نصیب کر دے. میں بے حد نڈھال ہوں، میرے قدم تھک کر شل ہو چکے ہیں. اب یہ فریفتہ پن میری جان کا روگ بن چکا ہے. یہ دنیا بدصورت لوگوں کے لیے بڑی بدصورت جگہ ہے جناب. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر قدرت نے میرا من اتنا کومل ہی بنانا تھا تو پھر میری شخصیت کو بھی اتنا ہی شگفتہ کیوں نہ بنایا. قدرت نے میرے وجود کے سبھی تاروں کو اگر سر اور موسیقی کی مدھر تانوں سے جوڑ کر نسوں میں عجیب ہجان خیز خواب دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر ہی دی تو پھر بے ڈھنگی شخصیت کا تال میل بھی کیوں درست نہ کر دیا. سچ تو یہ ہے کہ میری تباہی میں دل کے ساتھ ساتھ میری سماعت کا بھی برابر کا قصور ہے. جانے یہ میلوڈی ایک ہی لمحے میں میرے اندر سب کچھ اتھل پتھل کیسے کر دیتی ہے. میں پل بھر میں مکروہ بھکاری سے حسین شہزادہ بن جاتا ہوں. ساری قدرت میرے سامنے دو زانو ہو جاتی ہے. پریاں رقص کرتی ہیں اور میرے روم روم سے فریفتگی جھلکنے لگ جاتی ہے. آپ ضرور مجھے کوئی دیوانہ ہی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یقین کریں میں نے ابھی اپنی دیوانگی کا 10% بھی آپ کو نہیں سنایا. میں اپنے اندر کے پرستان اور باہر کی بے رحم اور کانٹوں بھری دنیا کے درمیان پس کر رہ گیا ہوں. میں اپنے اندر راجہ اندر اور باہر صرف ایک شودر ہوں جس کے لیے کسی نازنین کے دل میں کوئی جگہ نہیں. مختار اپنی بات ختم کر کے یوں ہانپنے لگا جیسے میلوں دوڑ کر آیا ہو. سچ ہے یہ تھکن تو ساری زندگی کی تھی. اندھیرا ڈھل چکا تھا اور بختیار کی آنکھوں میں جھلکنے والے دو آنسو اس لمحے مجھے ان دو بے مراد چراغوں کی طرح دکھائی دیے جو کسی گمنام کے ویران مزار پر کوئی ترس کھا کر جلا گیا ہو. میرا جی چاہا کہ میں اس تھکے ہوئے معصوم اور اندر سے بے انتہا خوبصورت شخص کے آنسو پہنچ کر اسے بتاؤں کہ اس دنیا میں کون ہے جو فریفتہ نہیں ہے. کوئی عورت پر فریفتہ ہے تو کوئی جاہ و حشم پر، کسی کو دولت کی فریفتگی ہے تو کوئی سونے کے محلوں پر شیدا ہے. شاید انسان پیدا ہی فریفتہ صفت ہوتا ہے. پھر جن کی ظاہری صورت اور شخصیت دنیا کے معیار پر پوری اترتی ہے انہیں تو اپنی فریفتگی کا صلہ مل جاتا ہے، اور کچھ بختیار جیسے سیاہ نصیب بھی ہوتے ہیں جو اس تڑپ اور کسک کی کانٹوں بھری خلش اور لا حاصل پن کے ساتھ ہی پوری زندگی جیتے ہیں. میں نے مزید کچھ کہے بنا دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا دیے، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس دعا کے لیے لفظ تھے ہی نہیں. شاید کچھ دعاؤں کے لیے لفظ ضروری نہیں ہوتے. بختیار نے پلٹنے سے پہلے مجھے کہا کہ وہ اگلے ہفتے دوبارہ یہاں آئے گا. اس کے جاتے ہی مجھے مما درگاہ کی سیڑھیاں چڑھ کر اندر آتی ہوئی دکھائی دی. شاید وہ زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے خود ہی میرے اور پپا کے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی. لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے ان کا زرد چہرہ کچھ اور ہی داستان سناتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. پپا بھی میرے گھٹنوں کے قریب آ بیٹھے. شاید وہ بھی مما کے مضطرب چہرے کی کوئی تحریر پڑھ چکے تھے. بہت دیر کے بعد وہ کچھ بولنے کی ہمت جمع کر پائیں. ساحر، آج میری زہرا سے ملاقات ہوئی تھی. کوئی اور وقت ہوتا تو شاید اتنا سن کر ہی میرا دم نکل جاتا، لیکن آج میرے لہجے میں ایک عجیب سی بیگانگی تھی. اچھا، مما کچھ دیر چپ رہی، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ زہرا کی پرانی ہمسائی کو خصوصی تاکید کر چکی تھی کہ جب کبھی زہرا کے گھر والے یا وہ خود اپنے پرانے گھر کسی بھی کام سے آئیں تو مما کو ضرور اطلاع کر دی جائے. یہ بات بھی ہمسائی ہی نے مما کو بتائی تھی कि जोहरा के घर वाले अपने कुछ जरूरी सामान समेत कुछ अरसे से कहीं और मुंतकिल हो चुके हैं। आज शाम अचानक ही मम्मा को समसाई का फोन आ गया कि उसने अभी अभी ड्राइवर समेत जोहरा की गाड़ी को उनके बंगले में दाखिल होते देखा है। मम्मा एक लम्हे की ताखीर किए बिना घर से निकल पड़ी और जब वो वहां पहुंची तो जोहरा वापसी के लिए गाड़ी में बैठ चुकी थी। मम्मा को देखकर उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया, लेकिन वो पूरी ताजीम से उनसे मिली। अलबत्ता मम्मा के तमाम सवालों के जवाब में वो सिर्फ इतना ही कह पाई कि साहिर को उसका बस एक पैगाम पहुंचा दिया जाए कि शायद कुदरत को हमारा मिलन मंजूर नहीं और वो कुदरत का ये फैसला मंजूर कर चुकी है, सो बेहतर होगा कि साहिर भी इस अनहोनी को तस्लीम कर ले। शायद यही हमारा नसीब था। लोग कितनी आसानी से अपना किया धरा नसीब और कुदरत की स्याही से जोड़ देते हैं। मम्मा उसके सामने बहुत रोई और गिड़गिड़ाई कि वो बस एक बार ही मुझसे मिल ले ताकि साहिर के वैशी मन को कुछ तो सुकून नसीब हो, लेकिन जहरा ने भीगी आंखों समेत मम्मा की ये दरख्वास्त भी नामंजूर कर दी। मेरा जी चाहा कि मैं मम्मा को उसकी बेरुखी की असल वजह भी बता दूं कि उसके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी रचने वाली है, लिहाजा उसे अब हमारे बेरंग आंसुओं से भला क्या गरज हो सकती है। मम्मा अपनी बात खत्म करके फूट फूट कर रो पड़ी और मैं यूं ही अपनी जगह साकित बैठा रहा। मुझे यूं लगा पल भर में जोहरा ने मुझे भी बख्तियार बनाकर रख दिया है। मैं एक लम्हे ही में शहजादे से मकरूह भिखारी बन गया हूं और सारी दुनिया मुझे हकारत की नजर से देखकर कहकहे लगा रही है। मैंने पापा के कोट की जेब में अटका पेन निकाला और करीब पड़े कागज पर अपनी जिंदगी की पहली तहरीर का उन्वान लिख डाला, जब तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए। पता नहीं ये नज़म थी, नसर थी या फिर सिर्फ चंद भटके हुए ख्यालात, लेकिन मैं लिखता चला गया। सुनो, तुम्हारी वफा पे मुझको यूं तो पूरा यकीन है, पर जमाने के वार का कुछ भरोसा नहीं है। सुगर कभी ऐसा हो जाए और तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए तो उन राहों से नफरत न करना जिन पर कभी हम एक साथ चले थे, कि किसी के कदमों की बेसबाती से भला इन बल खाती राहों को क्या रास्ता। इन नजारों से नफरत मत करना जो हमने कभी एक साथ देखे थे, कि किसी के वजूद की बदहायत वीरानी से भला इन खूबसूरत नजारों को क्या वास्ता। उन बातों से नफरत मत करना जो कभी हमने तन्हाई में की थी, कि किसी की बेतवाजुन शख्सियत की कड़वाहट भला उन मीठी बातों का क्या साबका। उन ख्वाबों से नफरत मत करना जो हमने कभी एक साथ मिलके देखे थे, कि किसी पैकरे बदनसीब के घनावनेपन से भला उन रोशन ताबीरों का क्या राबता। बस मुझी से नफरत करना कि मेरी रूह की स्याही से ही चार सू ये अंधेरा है, मेरी बदसूरती की वजह से ही दुनिया का हर रंग फीका है, हर राह बेराह है, हर नजारा मकरूह है, हर ख्वाब सराब है। बस मुझसे ही नफरत करना कि सिर्फ मैं और बस मैं ही था जो तुम्हारी इस नफरत के काबिल हूं। मैंने कागज लिफाफे में डालकर उस पर जोहरा का पता लिखकर पापा की जाने बढ़ा दिया। इस पर जोहरा का पता लिखा हुआ है, एक और एहसान कर दे मुझ पर, घर वापसी पर यह लिफाफा उसके घर देते जाइएगा। आज इस फसाने का अख्तिताम भी हो ही जाए तो अच्छा है। मम्मा पापा के चेहरे सफेद पड़ गए। जब तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए, फिर यूं हुआ कि मैंने दिन और रात का हिसाब रखना ही छोड़ दिया। मौसम मेरे लिए बेमायनी हो गए और मैं जमानो मकान की कैद से आजाद होता गया। जहां ठहर जाता घंटों खड़ा रहता और जहां बैठ जाता वहां तब तक खाक से जुड़ा रहता जब तक मुझे कोई हाथ से पकड़कर उठा न ले जाता। मुझे आईना देखे ना जाने कितना जमाना बीत चुका था। लोग मुझे मज्जूब कहकर पुकारने लगे। ये इश्क भी हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलता है। क्या सिर्फ होशो हवास छिन जाने ही से कोई मज्जूब बन जाता है, या फिर शायद सभी मज्जूब किसी न किसी नाकाम इश्क की भट्टी से तपकर निकलते होंगे। दरगाह पर मौलवी खिजर ही मेरे साथ बाकी रह गए। सब अपनी अपनी तायु नाती की मंजिल की जानिब पलट चुके थे, लेकिन सुल्तान बाबा जाते जाते जानशीनी का जो तौक मेरे गले में डाल गए थे, वो अब भी मेरे पैरों की जंजीर बना हुआ था। वरना शायद मैं कब का किसी वीराने की जानिब कूच कर चुका होता, क्योंकि अब मेरा इन इंसानों की महफिल में गुजारा बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मैं जितना लोगों से दामन बचाने की कोशिश करता, इतना ही मुझे उनका सामना करना पड़ता। शायद इन मजारों पर पहलू तही इंसान को मजीद मोतबर बना देती है। उस रात पप्पा मेरा खत लेकर जोहरा के दर तक पहुंचे तो बहुत देर इंतजार करने के बाद अंदर से कोई नौकर बरामद हुआ। पप्पा ने उससे जोहरा का पता पूछा तो पता चला कि वो अपने माँ बाप के साथ घर पर मौजूद है। पप्पा ने उसे मेरा रुक्का देकर जोहरा तक पहुंचाने की दरखास्त की और खुद पलटकर गाड़ी में वापसी के लिए जा बैठे। जब उनकी गाड़ी जोहरा की हवेली को मुड़ने वाली सड़क के मोड़ तक पहुंची तो उन्होंने हवेली के अंदर पोर्च में से तेजी से किसी को हवेली के फाटक की जानिब आते देखा था, लेकिन मेरी इल्तिजा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जोहरा के घराने के किसी भी फर्ज से बराहे रास्त राब्ता करने से इज्तनाब बरता। हालांकि उन्हें फासला होने के बावजूद ये गुमान हुआ था कि बाहर लपक कर आने वाली जोहरा ही थी। ये वही रात थी जब मेरे माँ बाप की जबानी आखिरी बार समातों में जोहरा के नाम का अमृत उंडेला गया था। उसके बाद सिर्फ कड़वाहट ही मेरा नसीब थी। मैं अपने ख्वाबों में सुल्तान बाबा का इंतजार करता, मुख्तलिफ महफिलों और वीरानों में भटकता रहता, लेकिन वो मुझे ना मिलते। हाँ, अलबत्ता उनके पैगाम कभी कभार मुझ तक किसी न किसी वसीले से पहुंच जाया करते। कई बार उनके हाथ के लिखे पुराने औराक मुझे हुजरे में या दरगाह के किसी और कोने में पड़े मिल जाते। वो बजाहिर तो उनकी मौत से पहले की याददाश्तें थीं, लेकिन दूसरी या तीसरी मर्तबा पढ़ने पर मुझे अपने हाल से मुताबिक कुछ न कुछ इशारा जरूर मिल जाता था। कभी कभी तो मुझे यूं महसूस होता कि कुछ कागज पुरानी तारीखों के बावजूद ताजा लिखे हुए थे। उस रोज भी मुझे दरगाह के हुजरे की पुरानी अंगीठी के पीछे से सफाई के दौरान एक ऐसा ही कागज मिला जो धूल और कालक में अटा हुआ था। मैंने उसे झाड़कर साफ किया और उसकी शिकस्ता तहरीर को पढ़ने की कोशिश करने लगा। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो। तहरीर कुछ मिटी हुई थी और कुछ कालक की स्याही से स्याह हो चुकी थी। मुझे उलझन होने लगी। मैंने बहुत दफा सुल्तान बाबा को मुख्तलिफ रुक्का नुमा कागजों पर कुछ लिखते हुए देखा था, लेकिन ये कागज यूं एक एक करके बाद में मुझे ही मिलते जाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वरना मैं उसी वक्त ये तमाम पर्चियां सींध सींध कर संभाल रखता। मैं तो आखिरी वक्त तक यही समझता रहा कि वो इन पर्चियों पर मुख्तलिफ अहकाम लिखकर बांट देते होंगे। मैंने कागज की गर्द को फिर से फूंक मारकर झाड़ा और जो हिसाब पढ़े जाने के काबिल था उसका रब्त जोड़ने की कोशिश की। असर का वक्त अहम है कि उसकी कसम खाई गई है, ध्यान रहे साइल न चूके। बस इतना ही समझ आया। क्या असर के वक्त कोई खास वाकया जहूर पजीर होने वाला था, और ये किस साइल का जिक्र हो रहा था? हमेशा की तरह मैं अपने जहन में बहुत से सवालात लिए खुद ही से उलझता दरगाह के सहन में आ बैठा। मौलवी खिजर चंद साइलों में घिरे बैठे थे। मैंने उन्हें कभी लोगों से उकताए हुए नहीं देखा था। वो कहते थे कि हम रिस्क की तरह अपने नसीब के बंदे भी ऊपर से लिखवा कर लाते हैं, सो जिसे कुदरत ने हम तक पहुंचा दिया वो जरूर कुछ मकसद लेकर ही आया होगा। मगर मैं सोचता था कि मेरे नसीब में तो बस मेरा कातिल ही लिखा था। शायद कुदरत ने उसे मेरी फना के लिए ही इस दरगाह पर भेजा था। इसके साथ ही कैसेट नंबर 20 अपने अख्ताम को पहुंची। वाकया नावल सुनने के लिए 6 सितंबर 21 लगा लीजिए। हमारी छोटी कुतुब की कॉपी बनाना कानूनन जुर्म है। अगर छोटी किताबों के बारे में हमसे राबिता करना चाहें तो टेलीफोन नंबर 2253803 या PO बॉक्स नंबर 1652 पर मोहम्मद मुनीर से राबिता करें।